213 से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे। कानन नासुमतम वाहिदा, सब लोग एक ही, इब्तदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर यह हालत बाकी न रही और इख्तलाफात रूनमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास रवि पर बशारत देने वाले और कजरवी के नताइज से डराने वाले थे, और इनके साथ किताबें बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रूनमा हो गए थे इनका फैसला करे। और इन इख्तलाफात की वजह यह ना थी कि इब्तदा में लोगों को हक नहीं बताया गया, नहीं, इख्तलाफ इन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। नोट कीजिए, लोगों में इख्तलाफ इल्म आने के बाद होता है। आज भी जाहिल और अनपढ़ लोग एक जगह जमा हो जाते हैं खुशी गम के मौके पे, लेकिन इल्म वाले इल्म आने के बाद छोटे छोटे गिरोहों में बढ़ जाते हैं। ये बनी इसराइल के डिक्लाइन की वजह थी। आज उम्मत मुस्लिमा भी कुछ इसी तरह के रवैये इख्तियार किए हुए हैं। इन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज़्यादती करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, फिर वो लोग जो अम्बिया पर ईमान लाए थे इन्हें अल्लाह ने अपने इज़्ज़त से इस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता राह रास्त दिखाता है। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, इस आयत पे खुद को पूछिए, अम हसिबती, क्या मैंने ये गुमान किया, क्या मैं जन्नत में चली जाऊंगी? ये हर एक की खुशफहमी दूर कर देगी ये आयत। फिर क्या तुम लोगों ने यह समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखिला तुम्हें मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा है जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है। इन पर सख्तियाँ गुजरी, मुसीबतें आईं, हिला मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल और इसके साथ ही पुकार उठे, कब आएगी अल्लाह की मदद? इस वक्त इनको तसल्ली दी गई कि हाँ, अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह ने जन्नत को मुश्किलात से घेर रखा है। खुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारिह के लफ्ज़ आते हैं कि जन्नत नफ्स पे बोझ पड़ने वाली चीज़ों से घेर ली गई। अगर आज हम सब अपनी इस छोटी छोटी मुश्किल को जो हमें अल्लाह के दीन के रास्ते में आती है अपने जन्नत के रास्ते का एक टिकट समझ लें तो हमें खुशी होगी। इसके ऊपर एक लेक्चर है जन्नत के वारिस, वेबसाइट पर मौजूद है। इसके बाद एक्साम बिर में से एक और चीज़, माल का खर्च करना। या सलून कमाजा युनफिकून कुलमान फ़क तुम इन खैर फ़लिल वालिदैन वल अक्रबीन, ये आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह इससे बाखबर होगा। तुम्हें जंग करने का हुक्म दिया गया और वह तुम्हें नागवार है, हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जंग के ज़िमन में ये ज़िंदगी का खूबसूरत असूल बता दिए, इसको आप हाईलाइट कर लें। बस दफ़ा ज़िंदगी में हम कुछ ऐसे हालात का शिकार हो जाते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। बस दफ़ा कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आ जाता है जिसको हम लाइक नहीं करते। तो शर से खैर निकालने का राज है इस आयत में कि कभी भी कोई चीज़ बुरी लगे तो समझिए कि इसमें कोई खैर होगी। आप देखेंगे इतना सुकून और इतना इत्मीनान होगा। और बंदगी का एक ये बड़ा गहरा नुक्ता है कि इंसान शर में से खैर ढूंढना चाहता है। ज़िंदगी का कोई ऐसा मामला याद कीजिए जो बहुत तकलीफ़ दे था, फिर उसके कुछ दिन या महीनों या सालों के बाद उसमें जो खैर निकली उसको याद करें। ये सामने रखेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पे भी आप इंशाल्लाह खुश रहेंगे। लोग पूछते हैं माए हराम में लड़ना कैसा है, कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर इससे भी बुरा क्या है, राह खुदा से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफर करना, और मस्जिद हराम का रास्ता अल्लाह को मानने वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना, अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरी बात है और फितना खून रेजी से शदीद तर है। एक कत्ल ख़ता हो गया था सहाबा से, गलती से कत्ल हो गया जबकि हुरमत का चांद दिख चुका था, सहाबा को नहीं पता था। इस छोटी सी बात को इतना बड़ा शोशा बनाया मक्का वालों ने कि अल्लाह के नबी के पास पहुंच गए तो उस पर यह आयत उतरी कि अच्छा ठीक है, ये गलती का एक कत्ल तुम्हें इतना बड़ा लगा तो तुमने मुसलमानों को मक्का से निकाला, उन पर जुल्म किया, उन पर ज़्यादतियाँ की, ये नहीं दिखा। आज भी यही होता है, मुसलमान की छोटी सी गलती पकड़ी जाती है और पूरी दुनिया पे कुफर जो भी काम करे उसकी कोई बात नहीं है। तो अल्लाह ताला कहता है कि फितनों से बचो। असल बात यह कि फितने से इंसान अपने आप को बचा ले तो बहुत बड़ी बड़ी खराबियों से वो खुद बहुत बच जाता है। لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، یہ ساری کوششیں ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے بدگمان کر دیں، وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا. اللہ صحابہ کی قربانیوں کا یہاں ذکر فرماتے ہیں. وہ کون ہے؟ یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے. یہاں کیا پتہ چلا؟ کہ جو اللہ کے راستے میں جان مال دیتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو پھر اس سے غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو اللہ اس کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو یہ ثابت کروا چکا ہوتا ہے کہ اللہ میں ہوں تیرا بندہ، لیکن ہوں بندہ، تو بڑی بڑی غلطیاں اللہ اس بندے کی معاف کر دیتا ہے جس بندے کا دل اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اور بڑی بڑی نیکیاں اس بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں جو صرف رسمی نیکیاں تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا دل اللہ اور اس کے دین سے نہیں جڑا ہوتا. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو، اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. بار بار صحابہ کے سوال کیا؟ ماذا ينفقون، یہ بندگی کا ایک اظہار ہوتا ہے. جب بندہ رب کا بندہ بن جاتا ہے نا تو اس کو فکر یہ لگ جاتی ہے میرا مال اللہ کے راستے میں کب لگے گا، اللہ جی کب استعمال کروں، اللہ جی یہ دے دوں، مناسب وقت آ گیا دے دوں گھر، اللہ دے دوں مال، اللہ زیور دے دوں. وہ پوچھتا ہے بار بار، موقع کا منتظر ہوتا ہے، تو اس کو کہا جا رہا ہے ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی اس سے بڑا وقت آنا ہے، ابھی دوسروں کو موقع دے لو، جب کوئی نہیں کر پائے گا تو پھر تم تو میرے اپنے ہی بندے ہو. دیکھیے کبھی آپ نے کسی اپنے پیارے سے بات کی ہو کہ دیکھو مجھے شاید ضرورت پڑ گئی میں تم سے کچھ لے لوں؟ لینا بھی نہیں پڑتا، بعض اوقات کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کو کہنا نہیں پڑے گا. تو جو بندہ ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ، عبد عبودیت والا، اس پہ اللہ کو بڑا مان ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چھپا کے رکھ لے اپنے پاس کسی صورت میں کیش کراپ، کسی صورت میں، اور اللہ کے دین کو ضرورت ہے اور وہ پوری نہ ہو. یہی بات جہاں صحابہ کی تڑپ سے ہمیں دکھتی ہے. اگلا پورا پارا انفاق فی سبیل اللہ کا ہے. کل رمضان کا پہلا دن ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ کے راستے میں صدقے خیرات سے کریں. اس سوچ کے ساتھ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے معاف کر کے ہمیں اس رمضان سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے. پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے خیر ہو، اور اگر تم ان کو ملا لو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو، وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. صحابہ کرام یتیموں کے مال کے بارے میں اتنے کیئرفل ہو گئے کہ انہوں نے ان کا کھانا الگ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اچھی نیت کے ساتھ اگر تم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا. یہاں سے لے کے اب پارے کے آخری دو رکوعوں سے پہلے تک نکاح، طلاق، عدت، رضاعت اور پیریڈس کے مسائل آئیں گے. خاص طور پہ عورتوں کے مسائل ہیں یہ سارے، اس کے لیے بھی ہم یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سب کی ڈیٹیل کتاب الطہارہ میں ہمیں بہت تفصیل سے مل جاتی ہے. اور یہ جو نکاح کے معاملات ہیں، کس سے کرو کس سے نہ کرو، یہ صورت مائدہ میں زیادہ تفصیل سے بات ہوتی ہے مشرک لوگوں سے نکاح کی، تو وہاں اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. اور عمومی نکاح یعنی مسلمانوں کے مسلمانوں سے نکاح پانچویں پارے کے پہلے سبق میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا ذہن بناتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ دین کی باتیں اور اس میں نکاح اور شادی کی باتیں آگے، کیونکہ یہ بھی ایک سامع بیر ہے، یہ معاشرتی نیکی ہیں، اور یہ کون سا بندگی کا رنگ ہے کہ انسان رشتے ناطے کرتے وقت اللہ کے حکموں کو مانے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ، تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا، जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन गुलाम मुश्रिक शरीफ से बेहतर है। अल्लाह करे ये माँ बाप भी समझ आए और बच्चियाँ भी समझ आए। वलो आजबकुम, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। क्यों भाई मना क्या है? ये बेदीनों से मुशरिकों से निकाह क्यों मना है? कवलाई का यदून इलन्नार, ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्ज़त से तुमको जन्नत और मगफरत की तरफ बुलाता है और वह अपने काम वाज़े तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तवक्को है कि वह सबक लेंगे और नसीहत हासिल करेंगे। आप देखिए कि इंसान अपने साथी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, औरत ज़्यादा दबी हुई भी होती है, तो अगर पार्टनर अच्छा ना मिले तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेकी ख़त्म हो जाती है और उसकी बुराई आपके ऊपर आ जाती है। इल्ला ये कि आपका रंग इतना शदीद हो कि दूसरे को माइल करने वाला बने। तो लिहाजा रिश्ते करते वक्त अपने बच्चे और बच्चियों के साथ जब भी मामला करें तो उनसे ज़्यादा दीनदारों से रिश्ते करें। एक असूल याद रखें, अपने बच्चों को ऑफकोर्स आपने रिबेलियस तो नहीं बनाना कि शराबी जानी बन जाए और नमाजी भी ना रहे, ये नहीं मैं कह रही, फिर तो आप किसी की बेटी पे जुल्म करेंगे। लेकिन आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने जाएं ना तो पहले चेक करें कि मेरा बेटा किस दर्जे का है। अगर तो काफ़ी स्ट्रांग है माशाल्लाह, उसका दिल फॉर्म है, तो थोड़ी सी कमज़ोर बच्ची अच्छे दिल वाली ले आइए, चंद दिन में इंशाल्लाह वो दीन पे आ जाएगी। आपका अपना बेटा ढीला ढाला है, अब क्या करें, उससे ज़रा सी स्ट्रांग लेके आए। और यही मामला दोनों तरफ है, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला चाहे तो जो मजबूत होगा वो दूसरे को अपनी तरफ ज़रूर करेगा। इसके बाद पीरियड्स की बात है, औरतों की बीमारी का मसला है। अल्लाह ने इस कलाम में औरतों के बहुत सारे मसाइल का हल किया, वो बीमारी जिसका अमूमन लोगों को पता भी नहीं होता उसको इतनी अहमियत दी। यहाँ से देखिए कि इस्लाम औरत की कितनी इज्जत करता है। और औरतों का मसला मसाइल का हल इस कुरान में है। क्या है मसला? वयसलूनक अनिल महीद कुल हुवा अज़म फातज़िलुन निसा फिल महीद। इसको कहते हैं विमेन राइट्स। रियली कोई कानून या राइट्स नहीं देता औरत के जो अल्लाह ताला दे रहे हैं। कैसे? पूछते हैं हैज का क्या हुक्म है, कहो ये गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए। कोई माँ बाप भी अपने दामाद को ये नसीहत नहीं कर सकते कि बेटी को, हमारी बेटी या तुम्हारी बीवी है, उसको इस तकलीफ़ के हालत में तंग ना करना। लेकिन अल्लाह को पता है कि औरत के लिए ये दिन तकलीफ़ के हैं, बीमारी के हैं। औरत सेहत से ज़्यादा बीमार होती है, तो अल्लाह ने शोहर बीवी का ख़ास ताल्लुक़ जो वो इन दिनों में मना कर दिया। और जो औरतें वो खूब जानती हैं कि अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। हम तो और कुछ भी ना जाने, सिर्फ यही अल्लाह का हक अदा करना चाहें, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कब तक रुको? फ़ैज़ा ततहर नफ़ातु हन मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास जाओ इस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बास रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। हाँ, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शीतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। हाँ, मगर अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। यहाँ अल्लाह ताला ने औरत को खेती कहा। लोग बड़ा माइंड करते हैं और पढ़ी लिखी औरतें कहती हैं देखो मैं खेतियाँ बना दिया, तो क्या कहता अल्लाह? इसके मुकाबिल ज़रा देखिए कि फिक्शन और मीडिया ने औरत को क्या कहा। चांद कहा, लिख के देख लीजिए। तितली कहा, दोनों को देखे। चांद को देखने में किसी को मेहनत करनी पड़ती है? ख़ास भी देखते हैं, आम भी देखते हैं। चांद तो सबके नज़रों को गरमाता है। अल्लाह औरत को इतना सस्ता नहीं करता कि हर एक उससे फ़ायदा उठा ले और कोई मेहनत भी ना करे। तितली बना दीजिए, आज इधर बैठी आज उधर बैठी, यही तो है, ये मेरे कितने पार्टनर्स हैं। और भंवरा आता और तितली का रस नोच के चला गया, कोई उसका हक देने वाला ही नहीं। इस्लाम ने मर्द को जिम्मेदारी सिखाई। इन दोनों मिसालों के बरक्स आप देखिए कि औरत को खेती कहकर मर्द को जिम्मेदार बनाया। खेती से फसल लेने से पहले किसान को मेहनत करनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, उसको नरम करना पड़ता है। ये सारे स्टेप्स हैं, इसको डिटेल से पढ़ा है हमने अपनी क्लास में। आप हैरान होंगे कि किस हद तक इस आयत में और शौहर बीवी के ख़ास ताल्लुक़ के बीच में मुमासलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एकदम अपनी औरतों के पास ना जाया करो, पहले उनका दिल राम करो, उनका नरम बात करो, उनसे प्यार मोहब्बत की बात करो, क्योंकि औरत इतनी जल्दी तैयार नहीं होती इस चीज़ के लिए। तो क्या पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात किस बात को भी सामने रखती है कि जिसके बारे में इंसान सोच नहीं सकता। मर्द औरतों पर कवाम है। इस्लाम मर्द को क्यों बड़ा बनाता है, ये वजूहत है। आज आप देखिए कि वेस्ट अगर सिर्फ मुसलमान शौहर की जिम्मेदारियों को देख ले तो मुझे यकीन है सब नॉन मुस्लिम औरतें मुसलमान हो जाएं। ये तो बात आपने भी सुनी होगी कि नॉन मुस्लिम औरतों को पूछा गया कि आप शादी के लिए किस मज़हब का मर्द पसंद करती हैं, तो अक्सरियत ने मुसलमान मर्द का। क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं। पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत निसा में कवामियत क्या होती है, लेकिन यहाँ आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ने औरत की जिम्मेदारी मर्द के हाथ में दे दी। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, हमें अल्लाह का तकवा मिल जाए। मैं कहती हूँ कितने खुशकिस्मत हैं, हमने इस दीन के लिए कोई कोशिश नहीं की और अल्लाह ने हमें ये दिन दे दिया। वालम अन्नकुम मुलाकूहु वबशिरिल मोमिनीन, और जान लो कि तुम उससे एक रोज़ ज़रूर मिलोगे। जानते हम सब कैसा होगा वो दिन जब मैं अपने रब से मिलूंगी। और ए नबी, जो तुम्हारी हिदायत को मान ले, इनको फलाह व सआदत का की खबर सुना दो। अल्लाह के नाम का ऐसी कसम है, यहाँ से अब तलाक का मौजू है जिसका नुक्ता आगाज कसम से है, क्योंकि तलाक भी एक किस्म की कसम होती है, शदीद कसम है। तो अल्लाह ताला ने कसम से बात शुरू की, ये ग्रेजुअलिटी है। अल्लाह के नाम का ऐसी कसमें खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिससे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से पास रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, इस पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता। मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो, इसकी बाज इनकी बाज परस तुमसे वो ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुरदबार है। औरत और मर्द के ताल्लुक को तोड़ने की सबसे हल्की किस्म जिसको ईला कहते हैं, उसका तस्करा है बगली आयत में, आयत 226। للذين يولون من نسائهم, जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ कायम ना रखने की कसम खा बैठते हैं, इनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर उसके बाद फ़ाइन फ़ाउ फ़ाइन अल्लाह गफूर रहीम, फिर अगर इसके बाद उन्होंने रजू कर लिया तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा और वो रहम फरमाने वाला। यानी शोहर बीवी के बीच में इस हद तक की नाराज़गी हो जाए कि शोहर गुस्से में कसम खा दे और कह दे कि मैं तुमसे बीवी वाला ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, इसको ईला कहते हैं। इस्लाम से पहले इसकी कोई हद नहीं थी, कई कई साल तक मर्द अपनी बीवियों के साथ इसी तरह की आँख मचोली करते। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया नो मोर, 4 महीने इसकी डेडलाइन है। अगर एक शौहर है, बीवी के साथ है, बीवी के हक़ पूरे नहीं करता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, उसके साथ मामला नहीं रखता, 4 माह के बाद उस औरत के पास इख्तियार है, या तो कोर्ट में जाके उससे फ़ैसला ले ले, या मर्द को मजबूर किया जाएगा कि उसके इख्तियार दे। ये है औरत के जिनसी जज्बात की तकमील। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात बंदे को किस हद तक जानती है, और ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ये बातें कोई ऐसी नहीं है कि हम इसके ऊपर बहुत अपने दिल में कोई अजीब व गरीब बातें सोचने लगें, लेकिन मैं तो जब भी आयतें पढ़ती हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि अल्लाह को मुझसे मेरे माँ बाप से ज़्यादा प्यार है, और दुनिया की हर हस्ती से ज़्यादा प्यार है, कि किस तरह मर्दों को पाबंद किया जा रहा है कि अब तुम अपनी बीवियों के साथ ये खेल नहीं कर सकते। तो गोया के ईला, एक माँ का ईला अल्लाह के नबी ने भी किया था, हम पढ़ेंगे सूरत अल-अहज़ाब में, लेकिन इसमें कसम लाजमी होती है। इसके मसाइल और सब कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं। जिनको भी अपने दोस्तों में, साथियों में तलाक का, इद्दत का कोई इशू, ये सारी आयतें जिस वक्त पढ़ें, आप इसकी जाके डिटेल तफसीर सबीलुल जन्ना में सुन लें। इसमें हमने एक पूरा टॉपिक किया हुआ है निकाह से तलाक तक, स्टेप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि बहुत सारे सवाल तलाक के मौजू के आते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसका मसला है वो खुद बात करे, खुद पूछे और इस टॉपिक को सुनिए, उसके बाद जो बात समझना है उसको करें।